તારીખ 25/12/1992 શ્રી દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રકાશ બોલ નંબર 627-633 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 240 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ખરાબ છે.
વર્તમાન મેં ઇતની નિષ્કંપ ઓર નકોર અને ઠોસ હૈ કે જિસે મેં વર્તમાન મેં હી નિર્ભય હું, નિરાલંબી હું, પરિપૂર્ણ હું, નિષ્ક્રિય હું, સુખ સ્વરૂપ હું, અસકૃત્ય હું, ત્રિકાળ એક રૂપ હું. આ બધા વિશેષણો નિર્ભયતા માટે અને દીનતા છૂટવા માટે, નિર્ભયતા માટે અને દીન પણ છૂટવા માટે બધા વિશેષણો છે. બધા વિશેષણોનો એક વિશેષ્ય છે આત્મા. અનેક વિશેષતાઓ કા એક પિંડ હૈ જિસકા અવલંબન છે, અભેદ અવલંબન છે. ઇતના ભેદ વિકલ્પ કી આવશ્યકતા નહીં જિસમે. વર્તમાન મેં હી એસા હું, એસા મેં યે સબ આ જાતા હૈ. જિતને ભી વિશેષતાએ દિખાઈ ઉ સબ વિશેષતાએ મેં का एक अभेद मैं ऐसा हूं, उसमें निर्भयता उत्पन्न होती है और दीनता निकल जाती है. मेरी भूमि मैंने मैं पिंड हूं, ऐसा क्षेत्रवान पदार्थ हूं. सामर्थ्य होने पर भी मेरा कोई क्षेत्र है, मेरी कोई भूमि है. इस रूप मेरा एक चैतन्य पिंड है जिसमें ये सब बातें भरी हुई है. इसलिए मुझे कहीं भी दीनता करने की आवश्यकता नहीं, न मुझे कोई भाई होने की भी गुंजाइश रहती है. ऐसा
जाने को तो पदार्थ स्पष्ट सामने दृष्टि में है तो वो तो ऐसा पदार्थ को देख करके अनुभव करके बोलता है. अज्ञानी के पास तो ये पदार्थ है तो यहाँ पर वो कैसे
सुने? ये तो कह कि ज्ञानी तो कह रहे हैं, जो कुछ बात कही वो तो ज्ञानी ने कही. अब मुमुक्षु के लिए उसका उपयोग कैसा उसने विचार करना है. कहा तो ज्ञानी ने कहा, अपने ज्ञान में पदार्थ में लेकर को लेकर के कहा. मैंने अपना स्वरूप को देख करके जान करके कहा, ठीक. अब मुमुक्षुओं को इसका क्या फायदा, इन बात में मुमुक्षुओं को प्रयोजन कितना, उतनी बात विचारनी है. तो मुमुक्षुओं को तो ये बात है कि मुमुक्षु निर्भय होना चाहता है, मुमुक्षु भी अपनी भिन्नता मिटाना चाहता है. तो ऐसा पदार्थ के लिए वो जिज्ञासा में आवे, अपना ऐसा स्वरूप को पहचान करने के लिए जिज्ञासा में आवे, जानने के लिए जिज्ञासा उनको पैदा हो, तो उसका अवलंबन आएगा. जानने से उसका अवलंबन आएगा, बिना जाने अवलंबन किसका लेवे. मुमुक्षुओं को तो इसकी जिज्ञासा होनी जरूरी है. मुमुक्षु के लिए वो बात है कि जहां तक ऐसा प्रगट पड़े, प्रत्यक्ष पड़े, अपना स्वरूप दिखने में नहीं आवे, वहां तक उसको जिज्ञासा में रहना अच्छा है. ज्ञान में नहीं आवे और मान लेवे तो किसको मानेंगे, बिना ज्ञान किसको मानेंगे. जानने के पहले मानने की कोई परिस्थिति होती ही नहीं, इसलिए सीधा मानने की बात नहीं होनी चाहिए. है ये श्रद्धा का विषय, लेकिन श्रद्धान तो ज्ञान पूर्वक होता है, बिना ज्ञान श्रद्धान होता नहीं.
की जिज्ञासा में रहना चाहिए।
शब्दार्थ तो पता चलता है मुमुक्षु को कि शब्दार्थ में तो मैं निर्भय हूँ, निरालंबी हूँ, परिपूर्ण हूँ, निष्क्रिय हूँ, तो उसका शब्द का अर्थ तो उसको समझ में आता है। लेकिन ऐसा अपना स्वरूप ज्ञान में ग्रहण नहीं होता है। तो ग्रहण इसलिए नहीं होता है कि ज्ञान में आता नहीं है। तो प्रयोजन कोई शब्द का अर्थ करने तक नहीं है कि हमको शास्त्र वचन का शब्दार्थ आता है कि नहीं आता है, इतना प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन तो हमारा वाच्य के साथ रहता है, वचन के साथ नहीं है। वचन तो वाच्य तक पहुंचने के लिए एक माध्यम है, निमित्त है, और कुछ नहीं है।
निमित्त भाव का निवेश तो हो रहा है, जो भी विशेष में बचे हैं उसके विरुद्ध भाव का अनुभव में तो खड़ा है।
तो वो तो क्या है कि पहचान तो लक्षण से ही होती है, बिना लक्षण तो पहचान, और लक्षण नियत है तीन काल में। बिना ज्ञान लक्षण कोई दूसरे लक्षण से पहचान हो गए वो तो बनता नहीं है। तीनों काल आत्मा का लक्षण ज्ञान ही है। ये गुरुदेव से का वचनामृत है परमागम सार में 637 में वो बात कहा है कि तीनों काल आत्मा का लक्षण ज्ञान ही है। और अंतर्मुख होने में ज्ञान ही साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं है। लक्षण से पहचान करे तो ये सब बात पहचानने में आ जाएगी। परिपूर्णता, निष्क्रियता, सुख स्वरूप, कृतकृतपना, उसका त्रिकालीपना, अचलपना, सब उसमें लक्षण में सब बात है। ये सब बात लक्षण 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 में है, कोई बात लक्षण में नहीं है ऐसा नहीं है। लक्षण से लक्ष्य पहचाना जाता है, प्रगट लक्षण से पहचानने में आता है। इसलिए कोई कल्पना करने की जरूरत नहीं है।
आपने बताया पूर्णता, पूर्णता का लक्ष्य बना हो, ध्येय बना हो, वो जिज्ञासा में रहे। तो यहाँ एक प्रश्न ये आता है कि जो पूर्णता का ध्येय जिसने बांधा, वो पहले जिज्ञासा में आवे कि पहले वो ऐसा मार्ग प्राप्त की खोज करे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी ये दुख से मुक्त हुए हों या सबसे छुटकारा जिन्होंने पाया हो, विधि बता सके।
सबसे पहली बात तो उनको ये आती है कि कोई ऐसा जानकार अनुभवी पुरुष मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाता है। जिस विषय से, जिस मार्ग से मैं अनभिज्ञ हूँ, मैं कुछ जानता नहीं, समझता नहीं, और खोज करने को जाऊंगा तो कहाँ गलती हो जाएगी, कहाँ अन्यथापना हो जाएगा, मुझे पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले वो बात तो उनको आती है। जिसको ध्येय पर पहुंचना है, उसको पहुंचने के लिए कोई सत्पुरुष, मदद करने वाला अनुभवी पुरुष मिल जावे, ऐसी भावना तो पहले आती है। सबसे पहले वो बात आ जाती है, फर्स्ट थॉट जिसको कहते हैं, वो आती है। फिर भी कोई नहीं मिलता है तो अपना ढूंढने का कार्य कोई वो छोड़ देता है, ऐसी बात नहीं है। मिले तो सही, अच्छी बात है, नहीं मिले तो भी अपना कार्य तो, और जितनी अपनी शक्ति है, योग्यता है, उस अनुसार वो अपना कार्य तो थोड़ा बहुत प्रयास तो चालू रहता ही है, कोशिश तो करता ही है।
ढूंढने का प्रयास तो सत्पुरुष का होना चाहिए,
सत्पुरुष का भी होना चाहिए, वो सबसे पहली बात है। लेकिन ढूंढने का प्रयास चालू रह करके दूसरा कुछ नहीं करे ऐसा भी तो नहीं। जो भी ग्रंथ है उसको पढ़ते हैं, समझने का कोशिश करते हैं, तो उसमें से उनकी जो सत्पुरुष को भेंट करने की जो बात है वो और मजबूत होती है। उनको नहीं मिलता है तो और मजबूत होती है। और ग्रंथकार भी ये कहेंगे ये तो प्रत्यक्ष बिना तुमको समझने में नहीं आएगा। ग्रंथ ये कहेगा कि ग्रंथ से नहीं मिलेगा वो बात, उससे वहां से भी वही बात मिलेगी। तो एक भी बात बिना सत्पुरुष का है नहीं। लेकिन कभी किसी जीव को नैसर्गिक रूप से कुदरती ऐसी भावना होती है बिना सत्पुरुष मिले, मुझे आत्म कल्याण करना है, मुझे संपूर्ण निर्दोष होना है, मुझे संपूर्ण सुखी होना है, मुझे दुख किंचित मात्र नहीं चाहिए, मेरा आत्म कल्याण हो जाए, ये मेरी भावना है। ऐसा बिना सत्पुरुष मिले भी भावना या ध्येय तो हो सकता है, लेकिन इसके लिए क्या क्या करना क्या क्या नहीं करना, कर्तव्य कर्तव्य के लिए वो मार्गदर्शन को मार्गदर्शक जो है वो दर्शक को चाहता है। जैसे रोगी को वैद्य की आवश्यकता महसूस होती है, ऐसी बात है, क्योंकि बहुत सी दवाइयां हैं, बहुत सी औषधियां हैं, कौन सी ले कौन सी नहीं ले तो डॉक्टर ही बताएगा। ऐसा ये 627 हुआ, 628 स्वयं की प्रसिद्धि के बारे में पूछा गया, तब कहा कि कोई जाने नहीं जाने इसमें आत्मा को कोई फायदा नहीं है। दरअसल में सामाजिक प्रसिद्धि की बात नहीं चली थी, बात तो चली थी कि ये परिस्थिति गुरुदेव को बताई जाए, तो गुरुदेव से उपकार हुआ है, आत्म कल्याण में निमित्त भूत तो गुरुदेव हुए हैं, और गुरुदेव को वो बात की जानकारी नहीं है कि उसको सम्यक दर्शन की दृष्टि की प्राप्ति हुई है, आत्मदृष्टि प्रकट हुई है, तो गुरुदेव को ये जानकर प्रसन्नता और होगी। जब कोई पात्र जीव को देखकर भी महापुरुष की प्रसन्नता बढ़ती है, तो कोई इससे अपने निमित्त से किसी को मार्ग मिलता है तो और प्रसन्नता बढ़ती है, गुरुदेव को भी प्रसन्नता बढ़ेगी और आपको भी उपकार विदित करने का एक कार्य हो जाएगा। उपकारी के प्रति उपकार निवेदन करें तो उसमें क्या तकलीफ है, क्या हर्जा है। इस ढंग से बात तो हमने रखी थी, वो प्रसिद्धि में आने के लिए तैयार नहीं थे, खुद तो प्रसिद्धि हुए उस बात में तैयार नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि जब गुरुदेव को पता चलेगा तो सारे समाज में ये बात फैलेगी, और हमें तो कोई समाज से परिचय बढ़ाना नहीं, हमारे कोई समाज से प्रसिद्धि का कारण है। उन्होंने इस ढंग से बात लिया कि कोई जाने नहीं जाने, अगर मानो कि गुरुदेव ने जान लिया, जवाब तो ऐसे दिया था कि मानो कि गुरुदेव ने जान लिया तो मेरे आत्मा को क्या फायदा हो जाएगा, मेरा तो कोई प्रयोजन नहीं है इसमें, फायदा होने का कोई प्रयोजन मेरा तो है नहीं इसमें। तो फिर न्याय वो रखा था कि उपकारी के प्रति उपकार निवेदन करना ये भी एक व्यवहारिक तौर से फर्ज होती है, उनको कोई सहज बात होगी तो दूसरी बात है, चला करके ये बात करना वो मेरे से नहीं हो सकेगा, ऐसा कहते थे। सहज होगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, चला करके तो मैं नहीं कह सकूंगा। मैंने कहा मैं बताऊंगा, आप कुछ मत बोलिए, मैं साथ में चलूंगा। और मेरे तो गुरुदेव से बातें करने की बहुत आगे पीछे हमारे तो ये चलती रहती है। मैं तो जाता आता हूँ, बहुत से बात करते हैं उनसे। आपके क्यों बोझा उठाते हो इस बात का? मेरे लिए बोझा क्यों उठाना उठाते हो? तो सम्मत नहीं होते थे। तो उस सिलसिले में ये बात चली है कि कोई जाने नहीं जाने इसमें आत्मा को कोई फायदा नहीं है। अनंत सिद्ध हो गए हैं क्या? अनंत सिद्ध हो गए आजकल, कोई उनके नाम तक भी नहीं जानते हैं। कौन से सिद्ध परमात्मा का नाम महावीर परमात्मा था और उत्तर में कौन से सिद्ध परमात्मा का नाम ऋषभदेव परमात्मा था? अनंत सिद्ध है वहां तो। कोई नाम पिछले अवस्था में कौन सा नाम था कौन जानते हैं? संसार के लोग को तो कोई जानते नहीं, क्योंकि किसी की पहुंच नहीं है वहां। सर्वोत्कृष्ट दशा है, उस क्षेत्र में किसी संसारी की तो पहुंच नहीं है। अनंत सिद्धात्माएं विराजमान है, कौन क्या है कौन क्या है कौन जानते हैं? संसार में तो उसकी प्रसिद्धि ही नहीं है। सिद्धों की प्रसिद्धि संसार में है ही नहीं। जब सिद्ध दशा की प्रसिद्धि नहीं तो ये सम्यक दर्शन की दशा की प्रसिद्धि क्यों करनी, ऐसा कहते हैं। जब सिद्ध दशा की भी प्रसिद्धि नहीं है सिद्धों को, तो फिर एक जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त हुए उसकी प्रसिद्धि में क्या रखा है, कौन सी कीमत है उसकी, ऐसा कहते हैं। उसमें कोई ज्यादा कीमत नहीं है। सम्यक दर्शन हो गया तो क्या हो गया, तो ऐसा ही कहते हैं। सम्यक दर्शन हो गया तो क्या हो गया इसमें? असंख्य सम्यक दृष्टि त्रियंच अभी ढाई द्वीप के बाहर मौजूद है, उन्हें कौन जानता है? इधर सोनगढ़ में किसी को सम्यक दर्शन हो गए तो धमाल मचती है, चाहे विरोध की चाहे अविरोध की, लेकिन धमाल तो मचती है अवश्य। लेकिन ढाई द्वीप के बाहर तो बहुत है, असंख्य है, कितने लाख करोड़ अरब इतने नहीं, इससे आगे जाना पड़ता है, अरबों के अरबों। जब हाँ बहुत से उसमें कितने तो पंचम गुण स्थान वाले हैं। हाँ लेकिन है ये बात दिव्य ध्वनि में प्रसिद्ध हो चुकी है और आगम में पड़ी है, ऐसी बात है। कोई नाम भी नहीं, कोई जन नहीं जानते उनको, क्यों प्रसिद्धि करते हो? सम्यक दर्शन की क्यों प्रसिद्धि इतनी, कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कहते हैं। आप किसी के लिए बोझा न उठावे, ये बात चली थी, आप किसी के लिए बोझा नहीं उठाना। मैं अपनी बात अपने मुख से नहीं कह पाऊंगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ, ये बात कहने के लिए मेरी तो तैयारी नहीं है मानसिक रूप से। और कोई बात बना करके जाना है क्या, ऐसा कहना फिर पहले ऐसा कहना फिर बाद में ऐसा कहना, पहले थोड़ी फालतू बात कर देना फिर दूसरी बात करना फिर इस करना फिर ऐसी बात कर देना। प्लानिंग जिसको कहते हैं, इसके लिए वो तैयार नहीं थे। नहीं ऐसे नहीं, पद्धति मेरी तो नहीं, सहज बात हो गई हो गई, नहीं हो गई तो नहीं हो गई, कोई बात नहीं। कोई बात बना करके जाना ऐसा अपने से नहीं हो सकता, तो उस पर थोड़ी ब्रैकेट में टिप्पणी दिया है कि धर्मात्मा के समागम में पूर्व योजित बात कहने से कृत्रिमता और असरलता का अपराध उत्पन्न होता है। इस प्रकार से बात की पद्धति नहीं रखना, क्या कृत्रिमता नहीं करना और सरलता से सहज जो बात हो जाए उसमें असरलता करके अमुक बात कहना ऐसा नहीं रखना। जो बात है सीधी सरलता से हो गई तो हो गई, नहीं हो गई तो नहीं हुई। जो कि मोक्षों को करने योग्य नहीं है ऐसा आप गुरुदेव को द्रव्य दृष्टि प्रकाश जब हमने दिया तब मालूम पड़ा। आवाज क्या हुआ कि जब वो स्वर्गवास हो गया तो रूपमा बेन आए थे सोनगढ़ गुरुदेव के दर्शन करने के लिए, तो फिर उनके साथ ये गुलाब बेन वगैरह का बात चला कि आप इनकी स्मृति में कुछ करना चाहिए, तो तैयार हो गया कि जो भी हमारे से हो सकेंगे हम तो कर लेंगे। क्योंकि बात तो मामूली है, इनके पत्र हमारे पास पड़े हैं और भी किसी के पास होंगे, तो इनकी पत्र की एक छोटी सी किताब निकाल देवे प्रकट कर लेवे तो उनकी स्मृति रह जाएगी, तो उसमें कोई लंबा थोड़ा खर्चा भी नहीं। बोले कि ठीक है जो भी खर्चा है हम दे सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो हम तैयार हैं। फिर बात चली कि गुरुदेव की आज्ञा बिना तो नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो गुरुदेव की आज्ञा ले ली उन्होंने, गुरुदेव ने हाँ भी भरी। फिर ये काम हमको सौंपा गया, तो ये काम फिर हमने परिपत्र निकाले कि जिसके पास चिट्ठियां हमें भेजे, कोई चर्चा हो तो हमें भेज दे, तो ऐसे एक सर्कुलर लेटर निकाला जो भी परिचित थे उनके पास, उसमें से जो पत्र आए जो चर्चा आए उसका संकलन करके ये पुस्तक बना। पुस्तक जब गुरुदेव ने पढ़ा तो ये अक्षर देह है, ऐसा तो आत्मा किसी की नहीं दिखने में आती। ज्ञानी को भी दूसरे ज्ञानी की कोई आत्मा थोड़ी दिखती है, उनके भाव ही दिखते हैं, बातचीत के शब्द के दौरान भाव दिखते हैं। ऐसे ये लिखने वाले जो शब्द, लिखा हुआ शब्द है वो बोला हुआ शब्द होता है, ये लिखा हुआ शब्द है, उसके माध्यम से भाव तो पकड़ लिए गुरुदेव ने और प्रसिद्धि कर दी, ऐसा हुआ है उस वक्त हुआ है। और इसका ये सबूत है कि जब उन्होंने गुरुदेव ने जब ये अपना दस्तखत दिया कि कुछ सुगानी जी के बारे में दो शब्द लिख दो, तो उन्होंने उतना ही लिखा है कि ये संस्कार लेके गए हैं, अनुभव लेके गए, ऐसा नहीं लिखा है। और बात तो हमने किया था, बोले कि हमारे ज्ञान में जितना आएगा उतना हम कहेंगे, हम कोई ज्यादा कम करके नहीं कहेंगे, हमारे ज्ञान में जितना है उतना कहेंगे। तो सुनते थे, उनकी रुचि देख करके संस्कार का शब्द लिख दिया है उन्होंने, उस वक्त लिखवा लिखने में ज्यादा नहीं दिया। और जब ग्रंथ से भावों का परिचय हो गया तब तो एकावतारी तक का जो भी ज्ञान में आया उतना प्रसिद्ध कर दिया। तो ज्ञान में जितना आता है उतना कहते हैं, वो न कम कहते हैं न ज्यादा कहते हैं, ये तो प्रमाण ज्ञान का स्वभाव है कि जितना नाप में आता है उसका बता दें, उतना ही बता रहे, ऐसा हुआ है बाद में पता चला है। 23 के साल में प्रसिद्धि, 2020 में देहांत हुआ है, किताब प्रकट हुई 2023 में, 23 में ये प्रसिद्धि हुई है। 2002 18 साल अनुभूति में रहे मोक्ष मार्ग में, 18 साल
रहे।
नहीं गुप्त रहे, मैं कारणवशात तो वो आ नहीं पाए, पिछले पहले 7 साल में एक दफे आए हैं, फिर 7 साल के बाद एक दफे आए हैं, मैंने 15 साल में 14 साल में 2 या 3 दफे आए हैं, फिर लगातार 5 साल तक वो आते रहे हैं बराबर। आखिर में तो 2016 में आए हैं, 16, 17, 18, 19, 20 बराबर आते रहे। काम बहुत किया, बिना सत्संग अकेले हाथ से बहुत काम किया, संस्कार नहीं था। वर्तमान पुरुषार्थ बहुत था, वर्तमान पुरुषार्थ बहुत था, वो काम किया है वो वर्तमान पुरुषार्थ से किया है। संस्कार अगर होता तो जब उनकी पात्रता अजमेर में बहुत चरम सीमा पर पहुंची तभी कुछ ग्रंथ से सम्यक दर्शन हो जाता, जैसे गुरुदेव को समीचार से हुआ वैसे ही। लेकिन ग्रंथ तो बहुत पड़े, मूल दिगंबर थे तो सत्शास्त्र तो मिले थे, लेकिन जो संस्कार होता है तो सत्शास्त्र से भी पता चल जाता है, संस्कार नहीं होता है तो प्रगट सत्पुरुष बिना देशानुभूति नहीं मिलते। जैसे श्रीमद जी है, गुरुदेव है, उनको समयसार मिल गया, श्रीमद जी को भी समयसार मिल गया, गुरुदेव को भी समयसार मिल गया, उनको तो मिला था फिर भी प्राप्ति नहीं हुई, गुरुदेव मिला जब प्राप्ति हुई, ऐसा केस ऐसा बना। इतना उस पर से ये भी मुमुक्षुओं के लिए सबक सीखने योग्य है कि धर्मात्मा के समागम में पूर्व योजित बात कहने की कृत्रिमता और असरलता नहीं होनी चाहिए। ये 628वां 629। एक पलड़े में आत्मा और दूसरे पलड़े में तीन काल तीन लोक, तराजू के पल्ले होते हैं ना, एक पल्ले में अपनी आत्मा और दूसरे पल्ले में तीन काल तीन लोक को रख दो, फिर आत्मा वाला पल्ला भार से बैठ जाता है और दूसरा पलड़ा उलझ जाता है, सिर्फ ऊंचाई नहीं होता उसको फेंक देते हैं, उतनी मुख्यता उतना वजन स्वरूप देखने पर स्वरूप पर आ जाता है, स्वरूप अगर दिखाई देता है नजर में आता है तो उतना वजन आता है। अब देखिए कि मुमुक्षुओं को क्यों आत्मानुभव नहीं होता, कि ये अपने उदय की छोटी मोटी बात को उतना वजन देता है कि ऐसा महान आत्मस्वरूप का वो विस्मरण कर जाता है। यही कारण है कि अनुभव नहीं होता। गुरुदेव कहते थे कि जहां तक किसी भी एक पदार्थ या एक प्रसंग में अधिकता बनती है, अधिकाई होती है, वहां तक आत्मा की अधिकाई आती नहीं और वहां तक अनुभव होता नहीं। आत्मा की अधिकाई आने से ही आत्मा अनुभव होता है, इसके बिना आत्मा अनुभव होता नहीं। तो अवलोकन में ये दिखने में आता है कि मैं कहां कहां अधिकता मेरी हो जाती है, मेरी समझ में वो बात आई है कि आत्मा परमोत्कृष्ट पदार्थ है, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, फिर भी अधिकता वहां नहीं जाती है तो और जगह जाती है। और अवलोकन से पता चलता है कि इसलिए मुझे अनुभव नहीं होता है। अगर मेरी अधिकता मेरे स्वरूप में आएगी और मेरे स्वरूप में जब आएगी कि जैसा महिमावंत है ऐसा पहचानने में आ जाएगा, तब ये बात होगी। इसलिए ज्ञानी ऐसा कहते हैं कि एक पल्ले में तो मेरा आत्मा है, दूसरे पल्ले में तीन काल तीन लोक है, मेरा पल्ला बैठ जाता है। इतनी अधिकता मेरी है, किसी कीमत पे मैं मेरा आत्मा को गंवाना चाहता, खोना चाहता नहीं। ये बात साफ है। और सब आ गया, अनंत सिद्ध आ गए, जितने अनंत है वो आ गए तीन काल के, अनंत पंच परमेष्ठी अनंत आ गए तीन काल के। फिर संसारियों की तो कोई कीमत ही नहीं है। हाँ ठीक है, उसमें क्या है, वो तो गे है सब, ज्ञान में तो सब गे मात्र है। यही भी नहीं सच्चा है, यही सच्चा भी नहीं है, क्योंकि वो ऐसा कहते हैं। आप अपने आत्मा की अधिकाई करो, हमारी अधिकाई मत करो। हमें अपेक्षा भी नहीं, हमें आवश्यकता भी नहीं। ये हमारी सिद्धि आज्ञा है, इसका पालन करो। इसका पालन करने से विनय हो जाता है, और इसकी आज्ञा से विपरीत चलने से अभिनय होता है। तो कहेंगे क्या कि आप नमस्कार तो करते हैं हमको, पर अभिनय साथ में करते हो, ऐसा क्यों करते हो? गुरुदेव एक दृष्टांत देते थे इसके बारे में, कोई बाई का, कि बाई कोई तेज मिजाज की होगी तो अपने धनी की कोई माने नहीं, और जो साड़ी है चुनरी है वो तो इनकी पहने, और कहलावे क्या कि फलाना फलाना की पत्नी है, क्या क्या कहलावे हैं? और पति का तो माने नहीं कुछ भी, एक भी नहीं माने। तो हमारे गुजराती में वो कहावत है कि ओढ़नी ओढ़े तो धनी में, और धनी नो की तो माने नहीं। ऐसे हम कहलावे कि हम तो वितराग के अनुयायी, पर वितराग की बात माने नहीं। ठीक। कहलावे क्या अपने आप को कि हम तो जैन है, जिनेश्वर हमारे देव है, जिनेन्द्र देव की हम पूजा करते हैं, लेकिन हम इनकी एक भी मानते नहीं है। ये ऐसी बात है कि ओढ़नी ओढ़े धनी नहीं और माने नहीं धनी नो, ऐसी बात हो गई। वो कहते थे गुरुदेव प्रवचन में देते थे, बात थोड़ी अगंभीर है लेकिन आशय गंभीर है, दृष्टांत थोड़ा अगंभीर होने पर भी उसका आशय तो गंभीर है। कि जब हम जिनेश्वर को मानते हैं तो उनकी आज्ञा का पालन करना यही मानना है, सिर्फ वंदन करना वो मानना नहीं है, उसकी आज्ञा का पालन करना वो मानना है। ऐसे अधिकाई का विषय है ये, और ये बात प्रयोजन की है कि हमारी अधिकाई आत्मा को छोड़ करके कहीं भी जानी नहीं चाहिए। ऐसे कोई पूछे कि हमें आपको खरीदना है, तो क्या हम बिकेंगे? किस किस कीमत पे बिकेंगे बताइए? कोई कीमत से बिकेंगे नहीं। और दीनता करते हैं तो क्या होता है? ये चाहिए वो चाहिए, उसमें क्या है कि आत्मा बिक गया और क्या है? ऐसे कहीं भी अधिकाई जाती है तो बिना मांगे दाम हम अपने आप को बेच देते हैं, ये बात हो जाती है। 630 देवलिंगी मुनि ने वीर बहुत उल्टा लगाया है। वो जितने जोर से उल्टा पड़ा है उससे अधिक वीर सम्यक होने में लगाना पड़ेगा, तभी सम्यक होगा। वो क्या सिद्धांत निकलता है इसमें से? मिथ्यात्व अवस्था में कार्य करने की पूंजी, व्यापार व्यापार करने की पूंजी दो गुण के पर्याय है, एक ज्ञान की और एक वीर्य गुण की, मैंने पुरुषार्थ। तो ये दो गुण का पर्याय में जिस जीव का क्षयोपशम ज्यादा हो, ज्ञान का क्षयोपशम और वीर्य गुण का क्षयोपशम पुरुषार्थ का, वो जीव जो ज्ञान का क्षोभ जिसको ज्यादा है वो शास्त्र ज्ञान में अधिक जानकारी कर लेगा, बहुत पढ़ेगा बहुत सुनेगा और इस विषय में इसका ज्ञान है, उसका व्यापार बढ़ जाएगा। निधि का जिसको क्षोभ है वो व्रत नियम संयम उसमें आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके पास दृढ़ता है कि नहीं खाना मैंने नहीं खाना है, त्याग कर दिया मैंने त्याग कर दिया, कुछ भी हो जाए हमारा त्याग है, बात खत्म। तो एक पुरुषार्थ है, वीर का क्षोभ है। ये दोनों पूंजी जो इसके पास है उसका उत्कृष्ट दृष्टांत ये द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि का है। शास्त्र ज्ञान भी बहुत करता है और व्रत नियम पंच महाव्रत समिति गुप्ति 28 मूल गुण को अच्छी तरह पालन करता है। पुरुषार्थ बहुत लगाता है, व्रतों के परिपालन में पुरुषार्थ बहुत लगाता है, लेकिन अंतर्मुख की दिशा नहीं है उसके पास। सब बाह्य क्रिया में, बाह्य साधन में, बाह्य उपयोग में उनकी ये सब पूंजी का खर्च होता है, तो उल्टी दिशा में उसका गमन हो जाता है। बाह्य दिशा में बहिर्मुख भाव में उसका जो परिणाम की गति है वो तो उल्टी दिशा में बहुत जाती है तेजी से, वो तो अंतर्मुख होने में तो वही दिक्कत हो जाएगी कि जितना उल्टा गया है इससे ज्यादा ताकत लगा के उनको सलटना पड़ेगा, तभी सलटेगा, इसके पहले वो सलट सकता नहीं है। अपन तो अच्छी तरह जानते हैं कि एक नया आदमी जो इस बात को पकड़ सकता है ऐसा विद्वान नहीं पकड़ेगा, पर त्यागी नहीं पकड़ेगा, बराबर है? संप्रदाय में देखने को मिलता है, एक सामान्य आदमी इस बात को समझेगा ग्रहण करेगा उसको इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी तकलीफ विद्वान को होगी और त्यागी को होगी, क्योंकि उल्टा ज्यादा गया है, उनको देख लगेगी। तो समर्थ दृष्टांत दिया है कि द्रविलिंगी मुनि ने बहुत वीर उल्टा लगाया है, जितनी जोर से उल्टा पड़ा है उससे अधिक वीर सम्यक होने में लगाना पड़ेगा और तभी उनको सम्यक होगा। ऐसी एक परिस्थिति नहीं बन जावे इसलिए मुमुक्षु जीव को अपनी शक्ति को यथास्थान में लगाना है, कहीं और जगह लगाना नहीं है, चाहे ज्ञान की हो शक्ति, चाहे वीर की हो पुरुषार्थ की हो, ऐसा। ये तो द्रविलिंगी मुनि का दृष्टांत समर्थ है, लेकिन मुमुक्षु के लिए भी ये बात सोचने लायक है अवश्य। यथार्थ शक्ति अपना प्रयोजन जहां भी दिखे वहां लगावे, कहां लगावे?
प्रयोजन दिखे वहां,
अपना प्रयोजन सिद्ध होवे वहां लगावे, अप्रयोजन भूत विषय में उलझे नहीं, बस ये प्रयोजन की दृष्टि जो है वो सूक्ष्म और तीक्ष्ण होनी चाहिए। अपना प्रयोजन की दृष्टि सूक्ष्म और तीक्ष्ण होनी चाहिए। मरना कोई दूसरे दूसरे प्रयोजन में उलझ जाएंगे और आयुष चला जाएगा, और जितना दूर गया उतना नजदीक आने में और ताकत लगानी पड़ेगी, ये बात हो जाएगी। ये 630 हुआ, 631 पूज्य गुरुदेव श्री के एक घंटे के प्रवचन में पूरी की पूरी बात आ जाती है। देखो परिचय तो इतना ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन मूल्यांकन क्या है, एक घंटे के प्रवचन में पूरी बात आ जाती है। द्रव्यार्थिक नहीं की, पर्यायार्थिक नहीं की, निश्चय की, व्यवहार की, निमित्त की, उपादान की, सब बात पूरी की पूरी आ जाती है। उन्हें कुछ पढ़ा लिखा न हो आदमी, उनको भी समझने में आवे, और बहुत पढ़ पढ़ करके बड़ा विद्वान हो गया हो उनको भी समझने लायक बात आ जावे, दोनों को माल मिले। ऐसा नहीं है कि विद्वान को मिले और अनपढ़ को नहीं मिले, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनपढ़ के लिए बात चलती है, विद्वान के लिए कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। पूरी की पूरी बात आती है, सूक्ष्म भी आती है, स्थूल भी आती है, सब तरह की बात आ जाती है। तो उसको शास्त्र भाषा में वचन अतिशय कहने में आता है, वचन अतिशय कहते हैं उसको। ये अतिशय क्षेत्र है ना, तो ये अतिशय यहाँ सीधा प्रत्यक्ष नजर आता है ये अतिशय को। अतिशय क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं है, ये जीवंत अतिशय है। क्या जीवंत अतिशय है, ऐसी बात है। कुछ बात तो ऐसी है कि जो वचन अतीत है, गुरुदेव के जो भाव थे प्रवचन में, जो उनके स्वयं के जो भाव थे, जिसे हम आत्मभाव कह सकते हैं, वो आत्मभाव में और आत्मरस में उतना विभोर होकर के प्रवचन देते थे के प्रवचन पूरा होने के बाद समूह के मुंह में ये बात रहती थी, ओहो क्या बात हुई, क्या क्या प्रवचन हुआ, क्या प्रवचन हुआ, लेकिन क्या मतलब वो बता सके नहीं, महिमा रह जावे। वचनातीत विषय चलता था, ऐसा बहुत चला है। गुरुदेव खुद कहते हैं कि भाग्यवान है कुछ लोग, तो ये वाणी चल रही है, हम तो उसके धनी नहीं है। जो सहज निकल रही है वो ऐसे निकल रही है, तो बहुत चला है। यही पंक्ति में मूल्यांकन कर दिया है गुरुदेव का प्रवचन का। अधूरी बात नहीं आई और क्षति वाली बात भी नहीं आई। ऐसा नहीं कहा कि गुरुदेव को ऐसा नहीं कहना चाहिए और वैसा कहना चाहिए, ऐसी तो बात किया नहीं ऐसी बात है, कितना फर्क है वो देखो। और जिसके आत्मा में इनकी छाप पड़ती है, निमित्त नैमित्तिक संबंध से ये वचन उपकारभूत जिसके आत्मा में होते हैं, उनको तो यही लगता है कि गुरुदेव ने हमें अमृत ही पिलाया है, कटोरे भर भर के अमृत ही पिलाया है। तो उनके लिए तो फिर क्या आगे उपमा दे, इससे आगे क्या उपमा दे दे। तो इसने लाभ लिया, उसने लिया, नहीं लिया तो क्या करें, गुरुदेव क्या करें इसमें। वो तो अपने रास्ते पे मोक्ष मार्ग के सड़क पे गुजरते गुजरते बताते गए रास्ता, कि यही रास्ते पे हम चल रहे हैं, अगर आप ठीक समझो तो चलो हमारे साथ, नहीं ठीक समझो तो हम तो चले तो चले, हम किसी के लिए खड़े रहने वाले नहीं हैं। ये 631 हुआ, 632 धार्मिक पर्व में, पर्व के दिनों में श्री मंदिर जी में पूज बहन श्री बहन की भक्ति देखकर बोले, ऐसी भक्ति मेरे में नहीं है, इस बात में तो मैं अपनी क्षति देखता हूँ। क्या हुआ था कि कभी कभी भक्ति में भी बैठते थे तो एक दफे भक्ति पूरी हो गई, बहुत अच्छी भक्ति चली थी, भक्ति बहुत भाव से करते थे बहने, बहुत अच्छी भक्ति चली थी, वो भी भक्ति भाव में आए होंगे। जब भक्ति पूरी हो गई तो बहनों के प्रति उन्होंने देखा तो किसी ने पूछा कि आप क्या देखते हो, तो बहुत अच्छी भक्ति हुई, बहुत अच्छी भक्ति कराई, भक्ति के जो भाव हैं ऐसे भाव मेरे में नहीं है। जब वो बार में कभी भक्ति कराते नहीं थे, ऐसे भाव से बार आते ही नहीं थे, कोई ऐसी चेष्टा ही उनकी नहीं होती, गंभीर हमेशा गंभीर मुद्रा में वो रहते थे। बोले कि मैं तो मेरी क्षति को महसूस करता हूँ कि ऐसी भक्ति मेरे से नहीं होती है, ऐसा मैंने नम्रता भी सहज रूप से प्रकट कर दी थी वहां। ये 632 हुआ, 633 श्रीमद राजचंद्र जी का पत्रांक 408 पढ़कर प्रमोद से निकले हुए उद्गार। ओ क्या चीज मैंने, क्या तत्व रख दिए इसमें, मैंने बहुत तत्व भरा है। नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा के नहीं पढ़ा है? अच्छा, उसमें ज्ञानी का जो आचरण होता है वो आचरण की बात चली है, सहज जो ज्ञानी का आचरण होता है, उन्होंने तो वो लिखा है कि ऐसा सनातन आचरण ज्ञानियों का होता है। सनातन मैंने तीनों काल के ज्ञानी का आचरण ऐसा ही होता है, और अपना आचरण को उन्होंने वहां प्रसिद्ध किया है। जैसा हमारा आचरण हो रहा है, हम समझते हैं कि सनातन ज्ञानियों का सनातन आचरण ऐसा ही होता है, ऐसा करके लिखा है। तो उसमें क्या मेल वाली बात क्या थी, ये पत्र बहुत इरादा से हमने पढ़ाया था, पत्र निकाल करके, क्यों कि श्रीमद जी भी एक गृहस्थी थे जो अपने व्यापार कारोबार में फंसे हुए थे, और सुगानी जी की भी यही हालत थी, वो भी गृहस्थी और व्यापार धंधे में फंसे हुए थे। तो मैंने दोनों का मेल तो बहुत था। अब जो 408 पत्र में जो बात लिखी है वो ऐसी लिखी है कि उदय का जो क्रम है, हमारा जो उदय का जो क्रम है, वो जो क्रम है वो क्रमशः उदय आता रहता है, उसमें हानि वृद्धि करने का हमारा कोई अभिप्राय नहीं है। हमें कोई संसार में प्रेम है, या कोई हमें कोई आसक्ति है, या कोई हमें रुचि है, प्रीति है, ऐसा तो कोई है नहीं। इसलिए जो भी उदय क्रमशः आता है उनको सम्यक प्रकार से, क्या लिखा है, सम्यक प्रकार से उनको वेदना, यही ज्ञानियों का सनातन आचरण होता है, जो आचरण हमें भी रहता है। फिर भी कभी कभी कठिनाई इस बात की होती है कि हमको नहीं, कहीं कारण भी नहीं है, कहीं कार्य भी, किसी कारण का कार्य रूप में भी हम खड़े नहीं है, हम तो भिन्न हो गए हैं, सारे उदय से भिन्न हो गए हैं, लेकिन साक्षी भाव में रहते हुए भी दूसरों की नजर में लाभ का या अलाभ का, सुख का या दुख का लोग हमें कर्ता मानते हैं, और ऐसी परिस्थिति आजकल ज्यादा बन रही है। यही एक हमारी तकलीफ है इस विषय में। फिर भी उसको भी, उसका भी साक्षी रह जाना, यही ज्ञानियों का सनातन आचरण है, और हम भी ऐसे ही आचरण में खड़े हैं।
एक परिस्थिति में साक्षी भाव,
हाँ, साक्षी भाव को हो या ज्ञाता भाव को हो, हर प्रसंग में, हर उदय में, हर हालत में ज्ञाता दृष्टा रह जाना, न कर्ता होना न भोक्ता होना, इसका नाम साक्षीपना है, प्रेक्षक। और सभी ज्ञानी ऐसे ही करते हैं, हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो बात उन्होंने अपने शब्द में बहुत अच्छे भाव में लिखी है, तो मन में पड़ गए। गुजराती तो अच्छी तरह पढ़ते थे, पढ़ गए, फिर इतने बोले क्या चीज रख दी है इसमें, बहुत तत्व भरा है। मतलब ज्ञानी का जो आचरण है उनको अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है। मैंने कहीं आगे पीछे करने का हमारा विचार ही नहीं, इष्ट अनिष्ट पना ही छूट गया है। रुको, पूर्व कर्म का उदय है, क्रमशः आने दो। हम तो एक बाजू ज्ञाता रह करके खड़े हैं, हमें कोई आगे पीछे करने का भाव ही नहीं रहता है, ऐसा करके लिखा है। बहुत अच्छा पत्र है पढ़ने लायक। वो तो भगवान पर विश्वास है कि जो भी केवल के ज्ञान में है ऐसा है, लेकिन जो भी है उसमें मेरा कुछ नहीं है। बिन पढ़ने में क्या है, हमारे मुमुक्ष लोग भी इस न्याय को तो स्वीकार करते हैं, केवल केवल ज्ञान वाला न्याय को, लेकिन अपनत्व रख करके तो ये न्याय ठीक नहीं है। जिसने अपनत्व छोड़ दिया उसके लिए वो न्याय बराबर है, लेकिन अपनत्व रख करके ये न्याय नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक प्रसंग बना था, ये जो भगवान दास जी सागर वाले थे, उनका कोई गोडाउन जल गया, आग लग गई, उससे मोटी बड़ी रकम का माल जो है वो जल गया, साफ हो गया, तो फिर उन्होंने समाधान कर लिया कि जो भी क्रमबद्ध में होने वाला था हो गया, जो केवली के ज्ञान में होने वाला था, लेकिन गोडाउन हमारा जला, क्या ये अपनत्व रख दिया, तो अपनत्व रख दिया और जो होने वाला सो हुआ था केवली के ज्ञान में, वो बात न्यायपूर्ण नहीं है। तो गुरुदेव को सोनगढ़ आए, जब रात्रि चर्चा में पूछा कि ऐसा हुआ था हमारा प्रसंग और हमने ऐसा समाधान भी कर लिया, तो क्या हमने समाधान ठीक किया, गुरुदेव ने ना दिया कि नहीं, ऐसा समाधान ठीक नहीं है, अपने अपने तो छोड़ देना चाहिए, फिर जो होने वाला सो हुआ ठीक है, लेकिन अपने तो रख करके ये न्याय बैठता नहीं है, ये भिन्न होने के लिए तो बात है। जिसको भिन्नता होती है उनको सहज उपेक्षा वर्तती है, क्योंकि पराई चीज में तो उपेक्षा ही होगी, अपनी चीज में अपेक्षा होती है, पराई चीज में तो उपेक्षा होती है, तो ये बात जब उपेक्षा की होती है और अपनत्व रखते हैं, वो बात तो परस्पर विरुद्ध हो गई। भूमिका के अनुसार राग आता है तो इससे भी भिन्नता तो रहती है इस भूमिका में। अगर मोक्ष मार्ग की भूमिका है तो उससे इससे भी भिन्नता तो रहती है, राग से भी भिन्नता और राग का विषय से भी, दोनों बात तो रहनी चाहिए ना, भिन्नता तो रहे नहीं और क्रमबद्ध रखे तो वो बात तो परस्पर विरुद्ध है। हाँ, अपने तो छूट जाना चाहिए, तभी क्रमबद्ध बोल सकता है और ये सही बोलता है, वरना उनका न्याय सही नहीं है बिल्कुल, उसमें से स्वच्छंद हो जाएगा, कभी उसमें से स्वच्छंद हो सकता है। और ये न्याय उपेक्षा का है, पर उपेक्षा तो अपनत्व रख करके हो ही नहीं सकती, अपेक्षा विरुद्ध बन गया है और अपेक्षा खड़ी रह गई है, तो जहां उपेक्षा होती है पराया जानने से, तभी ये न्याय वास्तविक रूप में सही है, ऐसी बात है। कठिन है या सरल है जैसा भी समझो, सत्य तो ऐसा ही होता है, तो उनको कठिन अपेक्षा से कहो, सरल अपेक्षा से कहो, दोनों अपेक्षा घटा सकते हैं, लेकिन बात तो जो है सो है।
एक 31 तारीख